नमस्कार भारत, 21 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अफगानिस्तान में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसा, कम से कम 28 की मौत, लेकिन बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकले वोटर। अमृतसर हादसे के कारणों की जांच करेंगे मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री ने दिए आदेश, विपक्ष ने आयोजकों के खिलाफ खोला मोर्चा।
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਸਕਰ ਹੈ, ਮੈਸਕਰ।
और कश्मीर घाटी के चुनावी धरातल पर खिला कमल, लेकिन आम लोगों के लिए क्या है निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के मायने?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सबको पता है कि 3-4% लोगों ने वोट जो डाले हैं वो बीजेपी ही वोट डाले हैं और बीजेपी ही लड़ा है इलेक्शन।
उर्दू अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अफगानिस्तान में हिंसा की घटनाओं के बीच हुए संसदीय चुनाव में लाखों लोगों ने मतदान किया। तकनीकी दिक्कतों की वजह से जिन मतदान केंद्रों में शनिवार को वोटिंग नहीं हुई, वहां आज वोट डाले जाएंगे। चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं भी हुई, इनमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 15 लोगों की मौत राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती धमाके में हुई। संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों के वोट डालने की सराहना की है, साथ ही सरकार और राजनेताओं से वोटों की गिनती की प्रामाणिकता को बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका रूस के साथ मिसाइलों पर रोक लगाने के लिए हुई संधि खत्म कर रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि रूस बरसों से इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। ये संधि करीब 3 दशक पहले शीत युद्ध के वक्त साल 1987 में हुई थी। इनमें दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को खत्म करने पर सहमति बनी थी। पत्रकारों से बात करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस ने संधि का उल्लंघन किया है, वो सालों से इस संधि का उल्लंघन करते आ रहे हैं और मुझे नहीं पता क्यों पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन हम उन्हें इस तरह संधि की शर्तों का उल्लंघन नहीं करने देंगे। हम पूरी तरह संधि का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब रूस इस लायक नहीं है कि हम उसके साथ संधि जारी रखें, इसलिए हम ये संधि तोड़ रहे हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को अलग देश के रूप में देखना चाहती है। इसी मांग को लेकर ताइवान में हजारों की संख्या में लोगों ने एक रैली में हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मुद्दे पर अगले साल एक जनमत संग्रह कराने की मांग की। लोगों में नाराजगी थी और उनका कहना था कि वो बीजिंग के हस्तक्षेप से परेशान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग वेन के रवैये को लेकर भी गुस्सा जताया। प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने कहा, ताइवान को अभी कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति निश्चित रूप से ताइवान के पक्ष में है। हमें अब और देर करने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि चीन उनके मामलों से दूर ही रहे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील में राष्ट्रपति पद की दौड़ में आगे चल रहे दक्षिणपंथी नेता जेयर बोल्सोनारो के समर्थकों पर राष्ट्रपति चुनावों के दौरान वामपंथी नेता और वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार फर्नांडो हदाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप है। ब्राजील के अधिकारियों का कहना है कि ये मामला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और इसकी जाँच होगी। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की मौत पर सऊदी अरब की ओर से जारी बयान पर मानवाधिकार समूहों और यूरोपीय सरकारों ने संदेह जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि खाशोजी की हत्या पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। वहीं फ्रांस का कहना है कि खाशोजी की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या वो सऊदी अरब के बयान से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक मैं इंतजार करूँगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे थे बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। क्या बुलेट के दम पर वोट की ताकत को दबाया जा सकता है? अफगानिस्तान के लोगों ने इसका जवाब दे दिया है। उनका जवाब है नहीं, नहीं दबाया जा सकता। अफगानिस्तान में कल संसदीय चुनाव के दौरान करीब 30 लाख लोगों ने वोट डाले। मतदान के दौरान राजधानी काबुल समेत कई जगह पर हमले भी हुए। इनमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं। तय वक्त से करीब 3 साल बाद हुए चुनाव के पूरे नतीजे आने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। कुछ केंद्रों पर आज भी वोट डाले जाएंगे। पूरी रिपोर्ट सुनिए भूमिका राय से।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक मतदान केंद्र में हुए आत्मघाती धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में कई लोग घायल भी हुए, लेकिन अरसे बाद हो रहे संसदीय चुनाव में वोट डालने का इरादा बनाए लोगों के उत्साह पर ज्यादा असर नहीं हुआ। धमाके के बाद भी मतदान करने को उत्सुक दिखे। काबुल में एक महिला ने बताया, काबुल की अमीना शेरजाई बता रही थी कि हम यहाँ वोट देने आए थे, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि अभी हम जाएं और कल वोट देने आएं। उन्होंने मतदान की शुरुआत काफी देर से की, जबकि लोग सुबह से ही वोट डालने आ गए थे। साल 2001 में तालिबान के सत्ता से हटने के बाद अफगानिस्तान में तीसरी बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ। ये पहला मौका था जब चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह अफगानिस्तान सरकार ही संभाल रही थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 लाख लोगों ने वोट डाले। वोटरों की ये संख्या शुरुआती अनुमान से ज्यादा है। ये स्थिति तब रही जबकि तालिबान और इस्लामिक स्टेट ने लोगों को मतदान में हिस्सा नहीं लेने की धमकी दी थी। काबुल के अलावा भी देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई। इनमें कम से कम 28 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ऐसी घटनाओं का असर वोटरों पर भी दिखा। मजार एक शरीफ में एक मतदाता ने बताया, मोहम्मद हलीम नाम के ये वोटर कह रहे थे कि हम सरकार से सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। हम हिंसा में अपने कई साथी नागरिकों को खो चुके हैं, अब हम सरकार से सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं। तालिबान और इस्लामिक स्टेट की धमकी को देखते हुए करीब 50,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। मतदान के दौरान कई जगह नए बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर भी दिक्कत देखी गई। जिन जगहों पर कल वोटिंग नहीं हो सकी, वहां आज वोट डाले जाएंगे। चुनाव के आखिरी नतीजे आने में करीब 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। अफगानिस्तान के चुनाव की कितनी अहमियत है? वहां संसद में कुल कितनी सीटें हैं और किन वर्गों के लिए यहां सीटें रिजर्व रखी गई हैं? ऐसे ही सवालों के साथ हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने बात की काबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता सईद अनवर से।
अफगानिस्तान के लोअर हाउस के 250 सीटों के लिए 2,566 कैंडिडेट इस इलेक्शन में सामने आए हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। 40 से ज्यादा रिजर्व सीटें ख्वातीन के लिए हैं, लेकिन जो ख्वातीन इस इलेक्शन में मर्दों के मुकाबले में ज्यादा वोट ले सकेंगे वो भी लोअर हाउस में आ सकते हैं, यानी ख्वातीन की तादाद 40 से भी ज्यादा हो सकती है। और इस बार एक सीट जो रिजर्व हुई है कोटा में अफगानिस्तान में मुकीम सिख और हिंदू कम्युनिटी के लिए है। ये पहली बार होगा कि अफगानिस्तान के लोअर हाउस में सिख और हिंदू कम्युनिटी भी एक रिप्रेजेंटेटिव उनके मौजूद होंगे।
हम जानते हैं कि वहाँ तालिबान का अच्छा खासा असर रहा है, अभी भी है, इस लिहाज से भी वहाँ महिलाओं की स्थिति को लेकर के जो एक परसेप्शन है, जो एक नज़रिया है, ख़ासतौर से विदेशी ज़मीन पर पश्चिमी देशों में भी, क्या ज़मीनी हालात महिलाओं की स्थिति को लेकर वहाँ अलग हैं?
दुनिया के मीडिया में तो अफगानिस्तान में महिलाओं के हवाले से काफ़ी रिपोर्ट्स आते हैं कि यहाँ उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखा जाए तो यहाँ ख्वातीन के लिए एक लिहाज से हालात अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप खिते के ममालिक को देखें तो उसमें फीमेल एमपीज ना तो पाकिस्तान में है ना ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में इतने नहीं है जितने अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में فیمیل وزیر ہے، کئی ڈپٹی منسٹرز ہیں، کئی ایمبیسڈرز ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹوں میں ان کو کام کرنے کے سہولیات اور امکانات موجود ہیں. خواتین کا جو انوالومنٹ ہے پولیٹکس میں وہ بہت زیادہ ہے. میں مثال دے سکتا ہوں کہ صرف شمالی پرانت بلخ میں جو اپنے یہاں موجود ہوں، تقریباً 2,00,000 خواتین نے ووٹ کے لیے رجسٹر کیے ہیں. یعنی یہاں محدودیت یا لمیٹیشن کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے کچھ مسائل میں خواتین کی انوالومنٹ کچھ کم ہے.
یہ تھے کابل سے سعید انور. چناؤ جمبو کشمیر میں بھی ہوئے تھے، ان کے نتیجے بھی آ گئے ہیں، لیکن ان پر بات تھوڑی دیر میں. اور اب بات پنجاب کے امرتسر میں دشہرہ میلہ کے دوران ہوئے حادثے کی. اس حادثے میں کل 59 لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی ہے. کل پنجاب کے مکھیمنتری کیپٹن امریندر سنگھ امرتسر پہنچے اور انہوں نے حادثے کی مجسٹریٹ جانچ کرانے کا آدیش دیا. جانچ کے نتیجے آنے میں وقت لگے گا، لیکن اس کے پہلے ہی راجنیتک دلوں نے ایک دوسرے کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے. پنجاب کے پورو اپ مکھیمنتری اور اکالی دل نیتا سکھبیر سنگھ بادل ستاداری کانگریس کے خلاف حملہور تیور اپنائے ہوئے ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا.
جدو فنکشن ہو رہا ہے، فنکشن دے آرگنائزرز بڑے مان نال کہہ رہے ہیں کہ جی آ دیکھو سامنے جتھے ڈاکٹر سدھو مسز نوجوت کور سدھو پریزنٹ سیگی، اوتھے کہہ رہے ہیں کہ آ سامنے دیکھو ریلوے ٹریک تے 5,000 بندہ کھڑا ہے، جے 500 بس ٹرینا بھی چل جان انہاں دے اتوں دی انہاں نے نہیں ہلنا. تسی کی میسج کی دے رہے ہو؟ تے وڈی گل ہے، مینوں بڑا دکھ لگیا جدوں کسے نے کیا کیا نیچرل ڈیزاسٹر ہے. کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں میسکر ہے، میسکر.
سکھبیر سنگھ بادل کہہ رہے تھے کہ یہ حادثہ نہیں جن سنگھار ہے. ان کا نشانہ کانگریس نیتا نوجوت سنگھ سدھو پر تھا. سدھو کی پتنی ڈاکٹر نوجوت کور اس کاریکرم میں موجود تھیں. سدھو بھی کل امرتسر میں تھے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی سناتے ہیں.
میں یہ مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے. There has been some negligence, but it was never intentional. یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. آروپ لگانے والے لگائیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. سوال اتنا ہی ہے کہ ایکسیڈنٹ کو پولیٹیکل روپ مت دیجیے. یہ ایکسیڈنٹ ہے، اس میں کسی نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا ہے.
یہ تھے نوجوت سنگھ سدھو. بی بی سی پنجابی سیوا کے ہمارے سہیوگی سربجیت دھالیوال بھی امرتسر میں ہیں اور فی الحال فون کے ذریعے کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں. سربجیت، حادثے کی پوری رات آپ سو نہیں پائے، کئی اور لوگ بھی جاگتے رہے، کیا بیتی رات کچھ الگ تھی؟ کیا غم اور غصہ کچھ کم ہوا ہے وہاں؟
دیکھیے، لوگوں میں غصہ ضرور ہے. ان لوگوں میں تو غصہ ہے یہ جنہوں نے اپنے کو کھویا، پر جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ آکروش میں ہے کہ کیسے اتنے لوگوں کو ایک ٹرین کچل کے چلے جاتی ہے، کوئی سگنل نہیں دیا، کوئی ہارن تک نہیں آیا، یا دیا ہوگا تو وہ شور میں سنائی نہیں دیا. تو لوگوں میں غصہ ہے، پر فی الحال اس مدعے کو لے کر جو سوالوں کے کنارے میں پنجاب کے مکھیہ منتری بھی آئے تھے کہ وہ حادثے کے 17 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچ رہے ہیں. تو کل انہوں نے الگ الگ ہسپتالوں میں گئے اور گھٹنا ستھل پر بھی گیا، اور انہوں نے حادثے کی جو جانچ کے آدیش دیے، 4 ہفتوں میں رپورٹ آئے گی. پر اس میں جو سب سے اہم ہے کہ ہم ان ایسے حادثوں سے سبق کیا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ کافی جگہ ہیں پنجاب میں، 4 اور جگہ ہیں جہاں پر بھی ریلوے ٹریک کے پاس ہی دشہرہ گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں. تو ہم اس سے سبق کیا لے رہے ہیں تاکہ آگے حادثے نہ ہوں ایسے، یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حادثے میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے دوسرے راجیہ، خاص طور پر بہار کے 4 لوگ ہیں، وہ پٹنہ اور بھاگلپور علاقے کے تھے. انہیں بھی کل جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھی وہ وہاں بھجوائی گئی ہے. تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امرتسر میں کل جو ہے لوگ تھے کافی حد تک بازار بند رکھے، ہر کوئی وہی ٹریک پہ جا کے دیکھ رہا تھا کہ بھی حادثہ ہوا تو ہوا کیسے. اور
جی، وہاں میڈیا کی بھی بھیڑ ہے، نیتا بھی پہنچ رہے ہیں، لوگ بھی ٹریک دیکھنے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات سوال اٹھایا کہ کیا کوئی سبق لیا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کی جاگروکتا کا پریاس کیا جا رہا ہے، کیا ایسی اویئرنیس دکھ رہی ہے کہ آگے ایسا کوئی کاریکرم ہو تو اس طرح کے حادثے ریپیٹ نہ ہو؟
देखिए हमारी रेलवे के अधिकारियों के साथ भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे देश में एक ऐसी कंपेन आगे से लेके जा रहे हैं ताकि ये कोई हादसा ना हो ऐसी जगहों पर, खासतौर पर जो ट्रैक के पास है और जो सारे लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैक है और जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल पास पास है, तो कम से कम ये जो ट्रैक है जोड़ा फाटक है इसे फिलहाल इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोग भारी गिनती में रहते हैं तो ये हादसे ना हो।
जी, लेकिन क्या केवल एक फाटक बंद करने से बात बदलेगी? बहुत शुक्रिया सरबजीत, ये सवाल आगे भी लोग इस पर मंथन करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। बीजेपी को कश्मीर घाटी में भी कामयाबी मिली है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और आम लोग इसे कैसे देख रहे हैं, सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के करीब करीब बायकॉट के बीच बीजेपी को कश्मीर में अपनी जीत के झंडे लहराने में कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी कश्मीर के शहरी निकाय चुनाव में जीत को अपने लिए एक खास अवसर मान रही है। शायद उम्मीद से ज्यादा कुछ मिला हो, लेकिन पार्टी के नेता बताते हैं कि इतनी सीटें मिलने की वो उम्मीद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल,
ये पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल इतिहास में कि हम कश्मीर से भी सीटें जीती हैं। नंबर बेशक कम होगा लेकिन अच्छी सीटें जीती हैं और हमने एंट्री जो है वो कश्मीर में बनाई है। हम तो इतनी उम्मीद कर ही रहे थे कि हमको इतनी सीटें मिलेंगी, उम्मीद तो करी थी।
बीजेपी को इन चुनावों में कश्मीर घाटी में 100 सीटें मिली हैं। दक्षिणी कश्मीर में बीजेपी ने 132 वार्ड्स में से 53 वार्ड्स पर अपना झंडा लहराया है। बीते कुछ वर्षों से दक्षिणी कश्मीर चरम पथ का गढ़ समझा जाता है। उधर कश्मीर में कांग्रेस को 157 सीटों पर जीत हासिल हुई है और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इन चुनावों में जगह जगह अपने झंडे गाड़े हैं। कश्मीर घाटी में 178 निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कराए गए 4 चरणों में शहरी निकाय चुनाव का कश्मीर में करीब करीब आम लोगों ने बहिष्कार किया था। कश्मीर में आखिरी चरण में 4% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहले चरण में 8 और दूसरे और तीसरे चरण में 3% मतदान रिकॉर्ड किया गया। विश्लेषक बताते हैं कि ऐसा जरूर है कि बीजेपी को कश्मीर में दाखिल होने का मौका मिल गया है, लेकिन वो कहते हैं कि दावा के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है। पत्रकार और विश्लेषक हारून ऋषि,
ऐसे इंतखाबात नहीं थे जिसपे किसी पार्टी की एतबारियत का अंदाजा लगाया जा सके कि उसकी आवाम में कितनी एतबारियत है। क्या पहले पोलिंग की शरह ही इतनी कम रही कि इस पे कोई भी राय कायम करना मुनासिब भी नहीं है।
हारून ऋषि ये भी कहते हैं कि चुनावों को हमेशा कश्मीर में हालात के साथ जोड़ा जाता है।
हकीकत यह है कि इन इंतखाबात का कश्मीर के मसले या दूसरे सियासी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है और इस बार भी यही हुआ।
कश्मीर के आम लोग कहते हैं कि जब लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो बीजेपी की जीत से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। श्रीनगर के एक नौजवान खुर्शीद अहमद कहते हैं,
सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सबको पता है कि 3-4% लोगों ने वोट जो डाले हैं वो बीजेपी ही से ही वोट डाले हैं और बीजेपी ने ही लड़ा है इलेक्शन।
गौरतलब है कि इन चुनावों का कश्मीर के दो मुख्य राजनीतिक दलों पीडीपी और बीजेपी ने भाग न लेने का फैसला लिया था। कश्मीर के अलगावादी नेताओं ने कश्मीर के आम लोगों से इन चुनावों का बहिष्कार करने को कहा था। इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों की मजीद 400 कंपनियों को तैनात किया गया था। हालांकि इन चुनावों में खास बात यह रही कि चुनाव से संबंधित हिंसा की कोई भी घटना देखने को नहीं मिली। जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 79 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं। कश्मीर में कंवल खिलने के बाद क्या कश्मीर में बीजेपी के राजनीतिक ढांचे की तस्वीर बदल सकती है? आने वाले दिनों में इसका इंतजार रहेगा। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
उधर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में भी कामयाबी मिली है। वहीं कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, सुनिए मोहित कंधारी की रिपोर्ट।
जम्मू संभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जहां जीत का परचम लहराया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आजाद उम्मीदवारों से भी पीछे छूट गई। भाजपा ने 10 जिलों में 520 में से 212 वार्डों में जीत हासिल कर लगभग 40% सीटों पर अपना कब्जा किया। भाजपा ने जम्मू नगर निगम में भी अपना वर्चस्व कायम रखते हुए 75 में से 43 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं, इन्होंने यहां 18 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि तीसरा स्थान हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू नगर निगम में सिर्फ 14 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा भाजपा ने जम्मू संभाग के अन्य जिलों में 14 अन्य निकायों में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न मनाते हुए कहा,
जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बंपर वोट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, लैंडस्लाइड जीत हुई है हमारी।
हालांकि आर्टिकल 35A के मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने प्रदेश में निकाय चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन दोनों पार्टियों की मदद से बड़ी संख्या में आज़ाद उम्मीदवार विजयी हुए हैं। जम्मू संभाग में कांग्रेस के कुल मिलाकर 110 उम्मीदवार चुनाव जीते, वहीं दूसरी ओर 185 आज़ाद उम्मीदवार मैदान मारने में कामयाब रहे। जम्मू में वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी ने चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते हुए BBC हिंदी को बताया,
रिजल्ट्स को देखें उस आलोचना के कॉन्टेक्स्ट में जो BJP फेस कर रही थी, तो जो आज की परफॉर्मेंस है ये स्टुपेंडस परफॉर्मेंस है, ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस BJP ने दी है। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स को देखें इस कॉन्टेक्स्ट में कि BJP का ओवरऑल पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू रीजन में कितना है, तो रिजल्ट्स हाईली डिसअपॉइंटिंग है। 520 जैसे टोटल म्युनिसिपल वार्ड्स हैं अक्रॉस जम्मू रीजन, और उसमें से BJP जीत पाए हैं सिर्फ 212।
कांग्रेस पार्टी को चुनावी नतीजों का आकलन करने की सलाह देते हुए जफर चौधरी ने कहा कि पार्टी को अपने खराब प्रदर्शन को लेकर गहन चिंतन करना चाहिए, ताकि समय रहते वो जम्मू संभाग में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। BBC हिंदी के लिए जम्मू से मोहित कंधारी।
और अब भूमिका राय बताएंगे आज के अखबारों की सुर्खियाँ। जी भूमिका
जी, वात्सल्य, दिल्ली से छपने वाले अगर सारे प्रमुख अखबारों की बात करें तो अमृतसर हादसे की जो खबर है वो भी आज दूसरे दिन अखबारों में छाई हुई है, लेकिन खबर का मोड बदल गया है। अब खबर लिखते हैं लोग कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई बड़ी कार्रवाई की नहीं, और अभी तक जिम्मेदारी नहीं तय हो सकी है इस हादसे को लेकर के। इसके अलावा एक बड़ी रोचक खबर है, और पाठक अगर सुने तो पाठक अगर आज पढ़ेंगे अखबार में तो उन्हें भी अचंभा होगा कि आज लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे। अमूमन 15 अगस्त को फहराते हैं, लेकिन आज क्यों? दरअसल आज आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, आज उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर लिया है। इसके अलावा अगर आप ओला और उबर लेते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो कल थोड़ा संभल कर निकलें, क्योंकि कल जो है ओला उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल है। तो इससे पहले कि आप देर हो जाएं और बॉस से आपको डांट पड़े लेट पहुंचने के लिए, तो थोड़ी सतर्कता पहले ही बरत लें।
कई लोग मार्केट जाने के लिए भी
जी बिल्कुल
हैं।
बहुत तरीके से ओला उबर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत दिल दहलाने वाली खबर है, थोड़े दिन पहले दिल्ली के बुराडी में सामूहिक आत्महत्या का एक मामला आया था। एक वैसा ही मिलता जुलता मामला आया है फरीदाबाद में दयालबाग में, जहाँ पे 3 बहनों ने भाई के साथ आत्महत्या कर ली है। जो शुरुआती जाँच है उसमें पुलिस ने कहा है कि माँ पिता और भाई की मौत हो गई थी 1 साल के दरमियान, और इसी से वो सारे लोग सदमे में थे, और इसी सदमे की वजह से उन्होंने एक सामूहिक आत्महत्या कर ली। एक और प्रमुख खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है कि टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी पर यौन शोषण के मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। उन पर धारा 354, 354A और 509 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। और एक चीज़ और कि सबरीमाला जो है मंदिर, उसके कपाट खुले हुए 4 दिन लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं को उसमें प्रवेश नहीं मिल सका है। अभी भी आधार पे उनकी उम्र देख करके ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त दे दी है। जी, तो ये थे इस आज जो अखबार छपे हैं उनके प्रमुख सुर्खियां।
बहुत शुक्रिया भूमिका। और अब भूमिका राय से ही सुन लेते हैं पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की समीक्षा। इसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान में पानी के संकट से जुड़ी खबरें सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहीं। पाकिस्तान में पीने के पानी की सख्त कमी है। पिछले हफ्ते लगभग सभी अखबारों ने इस बारे में खूब लिखा। पाकिस्तान में पानी की समस्या पर 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ने पानी के संकट पर लंबी बातचीत की और केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए। अखबार जंग ने सुर्खी लगाई है, बांध समय की सबसे अहम जरूरत है। अखबार के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 30 दिन का पानी जमा करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सिंधु जल संधि के तहत बातचीत करने की जरूरत है, और अगर डैम न बने तो 1960 के पहले वाली हालत हो जाएगी। अखबार दुनिया ने इसी बारे में सुर्खी लगाई है, पानी संकट पर आपराधिक अनदेखी की गई। अखबार के अनुसार जस्टिस शाकिब निसार ने कहा है कि पानी जीने मरने का सवाल है, लेकिन 40 साल तक इसकी अनदेखी की गई। पानी के अलावा पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोककर आर्थिक संकट पर काबू पाया जा सकता है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार इमरान ने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा है कि पिछली सरकारों ने पाकिस्तान के सरकारी संस्थाओं को पूरी तरह तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के लिए बनी कैबिनेट कमेटी का पुनर्गठन किया है। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान चीन का दौरा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने चीन जाने से पहले ही इस महत्वपूर्ण कमेटी में बदलाव किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर जो सारे अखबारों में छाई रही वो थी 6 साल की बच्ची जैनब के हत्यारे की फांसी की सजा। इसी साल जनवरी में पंजाब के कसूर में रहने वाली 6 साल की जैनब को अगवा कर पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके विरोध में पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। मुख्य न्यायाधीश ने खुद ही संज्ञान लेते हुए पुलिस को मामले की छानबीन करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने इमरान अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और फिर अदालत ने इमरान को फांसी की सजा सुनाई थी। जैनब के परिवार वालों ने इमरान को सार्वजनिक स्थल पर फांसी दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया था, लेकिन फांसी दिए जाने के समय जैनब के पिता को वहां मौजूद रहने की इजाजत दे दी थी।
उर्दू अखबारों की समीक्षा पेश कर रही थी भूमिका राय, इसे तैयार किया था बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आज से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज 2-0 से एक तरफा अंदाज में जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम अपने स्टार खिलाड़ी के बिना खेल रही है। टीम में ना तो क्रिस गेल हैं, ना ब्रावो और ना ही चमत्कारी के स्पिनर सुनील नारायण। अब ये तो भारतीय चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो युवा तेज गेंदबाज खलील अहमद को अंतिम 11 में मौका देते हैं या नहीं, लेकिन खुद खलील अहमद को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है।
मेरा जो स्ट्रेंथ है पेस है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी फास्ट बॉलर की जरूरत है, वो भी लेफ्ट आर्म, तो मुझे लगता है कि मेरा पेस और एक्स्ट्रा बाउंस जो है उससे मुझे काफी विकेट्स मिलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी।
वैसे आज ऋषभ पंत को फिनिशर के तौर पर भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा, इससे उन पर कितना दबाव होगा और महेंद्र सिंह धोनी को कितनी राहत मिलेगी, इसे लेकर विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा कहते हैं।
ऋषभ पंत अंडर 19 में मैंने ही उनको चांस दिया था दिल्ली के लिए, जहां से वो अब आज एक बड़े सितारे बन के उभरे हैं। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिंदास अपने क्रिकेट खेलता है, बैट से उनके बॉल जाता है, जैसा कि शुरुआती युवराज होते थे जब जवानी में उनका फिनिशर का रोल था, उसी तरह का टैलेंट ऋषभ पंत भी है।
उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की साइना नेहवाल के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और वो डेनमार्क ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। लेकिन पुरुष युगल वर्ग में भारत के श्रीकांत दूसरी वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता से 21-16 हैं 21-12 से सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए।
उधर सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या की खबर की पुष्टि होने के बाद अरब देशों के सोशल मीडिया पर इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। इसे लेकर कई कार्टून भी शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी इन कार्टून को देखना चाहें तो रुक करें bbchindi.com का। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में हिंसा की घटनाओं के बीच हुए संसदीय चुनाव में करीब 30 लाख लोगों ने मतदान किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका रूस के साथ मिसाइलों को रोक लगाने के लिए हुई संधि खत्म कर रहा है। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की मौत पर सऊदी अरब की ओर से जारी बयान पर मानवाधिकार समूहों और यूरोपीय सरकारों ने संदेह जताया है। ब्राजील में राष्ट्रपति पद की दौड़ में आगे चल रहे दक्षिणपंथी नेता जेयर बोल्सोनारो के समर्थकों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा है। एक अलग स्वतंत्र देश की मांग को लेकर ताइवान में हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि चीन उनके मामलों से दूर रहे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।